તારીખ 24/10/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 392 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 332
દર્શન પ્રશ્ન 392 પ્રશ્ન બેન શ્રી કે વચનામૃત કા એક वचन को लेकर के पूछा गया है कि जागतो जीव जागृत जीव खड़ा है वो कहाँ जाए, इसका मर्म क्या है। प्रश्न वो है कि इतने वचन का मर्म क्या है। मर्म माने क्या कि जीव को इस वचन से पारमार्थिक लाभ कैसे होता है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से कैसे इस बात को इस वचन को हम समझें, इसी को कहते हैं मर्म। समाधान देते हैं कि जागता जीव मैंने जागृत ही है, जीव तो जागृत ही है, इसका नाश नहीं हुआ है। जागृत में दो बात है, एक तो जीव है, नाश नहीं हुआ है मतलब है एक बात, और है इसका जो भान है कि मैं जीव हूँ ऐसा एक भान है, वो अपने मौजूदगी के विषय में एक जागृति है। दो बात साथ में है, इसका नाश नहीं हुआ है, वो सो नहीं गया है, मैंने बेभान नहीं है, सो नहीं गया है, मैंने बेभान नहीं है। एक अपेक्षा से संसार अवस्था में मूर्छित है कि जैसा स्वरूप है वैसा भान नहीं है, एक न्याय से मूर्छित है, लेकिन मैं हूं, मैं हूं तो सही, मेरी मौजूदगी तो है, उतना तो हर एक को होता ही है। जब उतना होता है तो ज्ञानी उसको और जागृत करते हैं कि देखो तुम परपद में स्वपद का भान मत करो, तुमको भान तो है कि मैं मनुष्य हूं। जैसे मनुष्य को भान है कि मैं पुरुष हूं तो पुरुष का भान होता है कि मैं पुरुष हूं, तो उसको कोई दूसरी तरह से संबोधन करे तो वो बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वो परपद में स्वपद का भान है और वो दुखदायक है। इसलिए सुखी होने के लिए सही भान कराते हैं कि तुम जीव हो और तुम्हारा मूल स्वरूप जैसा है वैसा भान में ले लो तुम। सो नहीं गया है, ज्ञान स्वभाव जागृत ही है, ज्ञान स्वभाव है वो तो जागृत ही है, जागृत रहना उसका स्वभाव है। जैसा हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मनुष्य है, हम पुरुष है या स्त्री है या हम फलाने फलाने हैं, इस गांव के हैं, इस देश के हैं, हमारे देश के नागरिकत्व का इतना अधिकार है, हमारे घर में हमारी संपत्ति पर हमारे परिवार पर हमारा उतना अधिकार है, सब विषय में हम जागृत तो है ही, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही जागृत रहने का है। स्वस्थान में नहीं जागृत वो आपत्ति का कारण है। अस्थान में, स्वस्थान में जागृत नहीं है, अस्थान में जागृत है। लेकिन जागृत तो है ही, ज्ञान स्वभाव जागृत ही है, वह कहां जाए, स्वभाव कहां चला जाए। वह परभाव में एकत्व नहीं होता, स्वभाव है वो एकत्व नहीं होता, अवस्था में एकत्व हो गया है संसार में, स्वभाव में तो एकत्व नहीं होता। मूल वस्तु स्वभाव कहीं जाता ही नहीं। अगर मूल वस्तु स्वभाव चला जाए तो वस्तु का सर्वनाश हो जाए, लेकिन वो तो कभी बन सकता नहीं है। अनंत काल निगोद में गया, एक इंद्रिय हो गया और ज्ञान बहुत कम हो गया, फिर भी वह तो जैसा का वैसा ही है। निगोद अवस्था से लेकर के फिर सिद्ध अवस्था होती है, अवस्था के ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है। हीन अवस्था हुए बहुत हीन अवस्था हुए तो निगोद हो जाए, लेकिन सर्वनाश नहीं हुए, ये अलघु हुआ। और बहुत विकास हो जाए तो सिद्ध अवस्था हो गए, ये अगुरु, वहां से फिर आगे गुरु होने का नहीं है, महान होने का नहीं है। अगुरु अगुरु लघु, अगुरु अलघु, मैंने अगुरु लघु ऐसा गुण है। अवस्था का ये आखिरी अवस्था दो बाजू का है, एक्सट्रीम पॉइंट वाला, एक निगोद एक सिद्ध। यहां से लेकर के बीच की सभी अवस्था जीव स्वरूप से जैसा है वैसा है, कोई फर्क नहीं, मूल स्वभाव में कोई फर्क नहीं। क्या कहा, अनंत काल निगोद में रहा, एक इंद्रिय हो गया और ज्ञान बहुत कम हो गया, फिर भी वह तो मूल स्वरूप से जैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। मैंने लघु, मैंने कोई हद से फिर आगे नहीं बढ़ना, कम नहीं होना। गुरु मैंने कोई हद से आगे नहीं जाना, अगुरु लघु, हाँ मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। जीव का स्वरूप है वो तो अवस्था दृष्टि से, मूल स्वरूप की दृष्टि से तो कोई बदघट है नहीं, अबडघट स्वभाव है। कैसा है, अबडघट, न बढ़ता है न घटता है, किसी भी हालत में बढ़ता नहीं, किसी भी हालत में घटता नहीं। ऐसा जो अपना मूल स्वरूप है, इससे संसार में जीव अनादि से अनजाना है, इसलिए जो भी कर्मजनित अवस्था को प्राप्त होता है अपने अनजान मूल स्वरूप के अनजान पने के कारण से, जो जो अवस्था को वो प्राप्त होता है, मैं वैसा ही हूँ, उतना ही हूँ, बस वो अवस्था का नाश होने से मेरा मृत्यु होता है, बस इस तरह से भ्रांतिगत अवस्था में वो अपने आप को, दुख को, आपत्ति में खुद ही घिर जाता है और खुद ही बहुत दुखी होता है। दुख बढ़ता है, तीव्र होता है, तो तीव्र दुख में ऐसा अनुभव होता है कि ये दुख से मैं पूरा पूरा घिर गया, रहा नहीं जाता है तो भी ऐसा अनुभव करता है, जबकि मूल स्वरूप अनंत सुखधाम है। मूल स्वरूप है वो तो अनंत सुखधाम है, अनंत सुख का निधान है, जिसमें दुख तो है ही नहीं, लेकिन दुख की कोई परछाई भी नहीं, दुख की कोई गंध भी है उसमें, इतना वो दुख से दूर है, फिर भी उसको भूलता है, दुख में घिरा हुआ अपने आप को अनुभव करता है। कैसी विचित्र परिस्थिति होती है, भीतर में अनंत सुख से लबालब भरा हुआ है, कितना सुख है कि उसको देखने को जाए, कि कितना सुख है वो देखने को जाए तो उसका कोई हद है ऐसा देखने में नहीं आता है, बेहद सुख है उसमें, असीम सुख है, सुख का समुद्र बोला जाता है, लेकिन वो भी उपमा घटित नहीं होती, क्योंकि समुद्र के नीचे भी एक तलवा होता है, बॉटम होता है, हमारे सुख समुद्र तो बॉटमलेस है, उसको कोई तलवा नहीं है, उसकी गहराई में चले जाओ, सुख भोगते 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 इसकी गहराई में जाओ, भीतर में ध्यान में जाते हैं, कहीं भी उसका अंत नहीं आता, इतना बेहद सुख से भरा है, भूलता है तो अपने आप को बहुत दुखमय दुख स्वरूप अनुभव करता है, दुख से घिरा हुआ अनुभव करता है, अरे 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 हमको तो इतना दुख है, इतना दुख है, दुख में डूब गए हैं, एक कैसी विचित्र परिस्थिति है, कहां स्वरूप कहां अवस्था। संयोग की अपेक्षा से 22 प्रकार की प्रतिकूलता को परिसह कहा है, 22 परिसह, हमारे मन 22 परिसह का जय क्यों कर सकते हैं, उसमें संसार की जितनी भी प्रतिकूलता है पूरी की पूरी आ गई, कोई बाकी नहीं, सभी प्रकार प्राण छूट जाए ऐसी प्रतिकूलता आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होते, इसका क्या कारण है कि वो अनंत सुख धाम में डूब गए, खो गए, तो बाहर क्या चल रहा है मालूम ही नहीं उसको, कभी थोड़ा सा विकल्प में आते हैं छठवें गुण स्थान में, मालूम पड़ता है कि बाहर की परिस्थिति ऐसी है तो और डूब जाते हैं, फिर और डुबकी लगा देते हैं, फिर मालूम ही नहीं रहता शरीर को क्या हो रहा है, मुझे नहीं, शरीर को क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं, मुझे तो कुछ होता ही नहीं, और मुझे कोई हो सकता भी नहीं, मेरे को कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, ऐसा मेरा अस्पर्श स्वभाव है, और मेरा जो चैतन्य गढ़ चैतन्य किला है वो अभेद्य है, अभेद्य किला को कोई भेद करके भीतर में प्रवेश करे ऐसी कोई परिस्थिति तीन काल में नहीं है, बस अपने सुख धाम में सुख भोगते भोगते वो मोक्ष में चले जाते हैं, अनंत सुख में चले जाते हैं, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे अंतकृत केवली होते हैं, आखिर में बहुत परिसर होता है, प्राण छूट जाता है, तो ऐसे परिश्रम चालू हुआ कि वो श्रेणी में चढ़ जाते हैं। इधर प्राण छूटता है, इधर केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होते ही सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। अगर आयु रहा तो सीधा ही आकाश में 500 धनुष ऊंचे केवल ज्ञान को प्राप्त करके वहां विराजमान हो जाता है, वहां उपसर्ग परिश्रम की पहुंच नहीं होती। वहां तो फिर शरीर परम औदारिक हो जाता है, सब घाव बाव सब कुछ रहता नहीं, एकदम सुंदर शरीर जैसे अरिहंत परमात्मा का वैसा हो जाता है। कहते हैं कि जो जागता जीव कहां जाए, अनंत काल भटका और जन्म मरण किया तो भी खुद तो ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। वो पतंग आता है, बहुत कोमल होता है पतंगा, रेल की पटरी के नीचे आ जाता है जंगल में। इसका जो शरीर है वो कागज से भी पतला हो जाता है, लेकिन जैसा पटरी के नीचे आता है वो शरीर आता है, आत्मा वहां से छूट जाता है। आत्मा को कुछ नहीं होता, इसके एक प्रदेश में घाव नहीं लगता, एक प्रदेश खंडित होकर के अलग नहीं होता, और शरीर जैसा चिपक गया वैसा वो पतला हो जाए ऐसा बनता नहीं, तो दूसरे गति में चले जाता है, पूर्व कर्म के अनुसार दूसरा देह को धारण कर लेता है। शरीर का जो कुछ हुआ सो हुआ, आत्मा को कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे रेल की पकड़ में शरीर आता है, आत्मा नहीं आता। पटरी की पकड़ में, पहिया और पटरी के बीच में शरीर आ गया, आत्मा वहां से छूट जाता है और आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता। शरीर का एकत्व होने से पीड़ा का दुख उस वक्त भोग लेता है वो जीव, बस वहां से छुटकारा हो जाता है। कहां जाए जागता जीव, कहां जाए अनंत काल भटका और जन्म मरण किया तो भी खुद तो ऐसा ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। चाहे जागता हो सोता हो स्वप्न में हो तो भी वह सत है और सत का नाश नहीं होता, सत का नाश नहीं होता। मतलब ये हुआ कि हम कभी मरे ही नहीं। अगर हम पूर्व भव में हमारी मृत्यु होती तो हम अभी मौजूद कहां से होते हैं? जैसे स्वप्न में मृत्यु का अनुभव होता है कि हम मर गए और आंख खुल जाती है, देखते हैं तो हमारे बिस्तर पे हम लेटे हुए हैं, तो मृत्यु का अनुभव तो हुआ स्वप्न में, सब रोने लग गए थे, जबकि वास्तव में जिसका मृत्यु होता है वो दूसरे का रुदन देखने को वहां होता नहीं है, लेकिन ये भ्रांति स्वप्न में होती है कि देखो मेरी मृत्यु हो गई, सब रोने लग गए, बहुत रोते हैं, फिर हमारे शरीर को सब ऐसे करते हैं, बांधते हैं, वो करते हैं, ले जाते हैं, जलाते हैं, सब देखता है। कोई अपनी मृत्यु को देख सकता है? भ्रांतिगत रूप से स्वप्न में वो सब देखने में आता है, वैसे ही पूर्व भव की मृत्यु भ्रांति है। वर्तमान में हम मौजूद है इसका मतलब कि हमारी मृत्यु हुई नहीं और हो सकती भी नहीं, ऐसे अनंत मृत्यु का प्रसंग हो गया। हम वर्तमान में मौजूद है वो इस बात का सबूत है कि हमारी मृत्यु कभी हुई। वैसे ही ध्रुव धाम का आश्रय होता है और क्षणिक पर्याय का एकत्व मिट जाता है। पर्याय का एकत्व, राग का नहीं, पर्याय का एकत्व मिट जाता है। तो पर्याय रूप अपना अनुभव है वो भ्रांत, स्वप्नवत भ्रांति थी ऐसा ही मालूम पड़ता है। पर्याय का एकत्व स्वप्नवत भ्रांति है ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। पर्याय में एकत्व हो करके पर्याय रूप जो अपना अनुभव हुआ ध्रुव धाम में विराजमान होने से ये भ्रांति थी ऐसा अनुभव आता है, वही सम्यक है। जब हमारी एक समय की पर्याय में भी अपनापन ये भ्रांतिगत अवस्था है तो फिर राग में और राग के विषयभूत दूसरे दूसरे शरीर आदि पदार्थ में अपनापन तो भ्रांति है ही, वो समझाने की जरूरत फिर नहीं रहती। सत का नाश नहीं होता, जो विद्यमान है जागृत है वह कहाँ जाए, जो विद्यमान है जागृत है वो कहाँ जाए। विद्यमानता की जागृति, हमारा उपयोग अन्य अन्य ज्ञेय पदार्थ के प्रति जाता है। स्वरूप का भान नहीं होने से हमारी विद्यमानता में हम उसको नहीं देखते। और जिसको अपनी विद्यमानता का अनुभव रहता है वो दूसरों को अपनी विद्यमानता में रह करके भिन्न 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 ही देखते हैं, भिन्न देखते हैं तो उसकी असर नहीं आती। अभिन्न देखने से भ्रांतिगत रूप से असर पैदा होती है, फिर भी अभिन्न हो नहीं सकता। जो विद्यमान है जागृत है वह कहाँ जाए। तो अपनी विद्यमानता का भान में रह करके परिणमन करो फिर कोई आपत्ति नहीं होगी, फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई आकुलता नहीं होगी, वो बात गारंटेड है। अपनी विद्यमानता का भान में रहो, मैं जीव स्वरूप से विद्यमान हूँ, मैं अपने ज्ञानमय स्वरूप से विद्यमान हूँ। बस फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। जागता जीव विद्यमान है, विद्यमान वस्तु कहाँ जाए, वजन कहाँ आया, विद्यमानता पर वजन आया। जागता जीव विद्यमान है तो अपनी विद्यमानता पर जागृति जिसकी है, अपनी मौजूदगी पर जिसकी जागृति है वो भिन्न हो जाएगा, कोई ज्ञेय से एकत्व नहीं करेगा, स्वरूप में एकत्व रह जाएगा बस। ये इसका पारमार्थिक दृष्टिकोण है, यही इस वचन का मर्म है कि अपनी विद्यमानता को जागृत रह करके अनुभव करो बस, इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं है। इसलिए दो बात, जागता जीव विद्यमान है, विद्यमान वस्तु कहाँ जाए, जो विद्यमान है वो कहाँ जाए? जागता जीव सदा के लिए जागता ही है, जागृत है, यानी कि चैतन्य स्वरूप है और वह जागृत है तो कहाँ जाए? जागृति का एक भाव ऐसा होता है, सावधानी, अपनी विद्यमानता में हम सावधान हैं, हमारी मौजूदगी में हम सावधान हैं, हम चैतन्य है ऐसी हमारी विद्यमानता है, हम जीव है ऐसी हमारी विद्यमानता है, उसमें हम सावधान हैं, इसमें हम जागृत हैं। जो स्वरूप में सावधान है वो पर में बेसावधान है, और जो पर में सावधान है वो स्वरूप में, स्वरूप को चूक जाता है, वो स्वरूप में बेसावधान है या स्वरूप के लिए वो बेभान है। तो जागता जीव, जागृत जीव में स्वरूप सावधानी का संकेत है। क्या है? स्वरूप सावधानी का उसमें संकेत है कि तुम अपने स्वरूप में सावधान हो जाओ, अपने चैतन्य स्वरूप में जागृत रहो और पर की सावधानी को छोड़ दो। किया ने और भाव निकाले, जागता जीव सदा के लिए जागता ही है, जागृत ही है सदा के लिए, अनादि अनंत। जागृत रहना स्वभाव है, स्वरूप को भूला हुआ जीव पर पद में तो सावधान है ही। जैसे संसारी जीव धनार्थी है, मुमुक्षु जीव मोक्षार्थी है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, अर्थ नाम प्रयोजन। संसारी जीव धनार्थी होता है और मुमुक्षु जीव से लेकर साधक सभी मोक्षार्थी है, सबों को मोक्ष का प्रयोजन है। जिसका प्रयोजन है वह उसकी सावधानी है, देख लीजिए सावधानी का है, जिसका प्रयोजन है उसकी सावधानी है। अगर हमारी सावधानी हमारे संयोग में है, क्योंकि पैसे से सब संयोग खरीदे जाते हैं, तो संयोग में सावधानी है वो धनार्थीपना है, वहां तक मोक्षार्थीपना नहीं है। मोक्षार्थी है वो अपने मोक्ष के प्रयोजन में सावधान है, तो उस संयोग में सावधान नहीं रहता। क्यों? क्यों कि सावधानी दो परस्पर विरुद्ध स्थान में रखी नहीं जाती, की नहीं जाती, हो नहीं सकती। चाहे इसमें सावधान हो चाहे इसमें सावधान हो, जिसमें तुमको तुम्हारी भलाई समझ में आए वहां सावधान हो जाइए। अगर मोक्षार्थी हो तो मोक्ष की दिशा में, मोक्ष के कार्य में सावधान हो जाओगे तो और सावधानी छूट जाएगी। सावधानी छूटेगी ये बात विचार में आते ही हिम्मत है कि नहीं है इसका प्रश्न खड़ा होता है, कि अगर हम हमारे कार्य में, संसारिक कार्य में सावधान नहीं रहे तो कहीं संयोग में उलट पलट हो गया और बड़ा नुकसान आ गया। जैसे व्यवसाय है, धंधा है, पुरुष लोग तो ये बात है, दिवाला निकल गया तो क्या करेंगे? विचार बेसावधानी का, संयोग की बेसावधानी का विचार, वैचारिक भूमिका में नाहिम्मत हो जाते हैं बहुभाग लोग, हिम्मत छूट जाती है। विचार की भूमिका में हिम्मत नहीं रहती, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो फैसा हो जाएगा, कोई ले जाएगा तो कोई लूट जाएगा तो कोई हमको धोखा दे जाएगा तो वो करेगा, ध्यान नहीं रखे तो कोई धोखा भी दे सकता है, हमारे नौकर चाकर भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए संसार में तो सिखाया जाता है कि देखो जिम्मेवारी को समझो। जैसे कोई लड़का स्कूल से कॉलेज से पढ़ कर के दुकान पर आता है, हम लोग बनी है बहु भाग ऐसा बनता है, दुकान पर आना होता है धंधे पर आना, पहले उसको समझाया जाता है कि यू रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी क्या है उसको समझो पहले, तुम्हारी कितनी जिम्मेवारी है, किस काम की जिम्मेवारी है, मतलब क्या है कि उसको बहुत सावधान कर देते हैं, उतना चिपकाते हैं कि बेचारे को छूटने का कोई उपदेश मिले तो छूट नसर नहीं होता है। ये बात आ जाती है, फिर ये जिम्मेवारी वाला जो भूत लग गया, भूत का प्रवेश हो गया, बस खत्म। ये भूत को निकालना बहुत मुश्किल है, फिर संसार की जिम्मेवारी आपको तो बहुत बड़ी बंजार है, जैसे बंजारे की बंजार होती है ऐसी बड़ी बंजार है। माता पिता के प्रति उतनी जिम्मेवारी, बच्चों के प्रति उतनी जिम्मेवारी, पति पत्नी के आपस में उतनी जिम्मेवारी, समाज के प्रति उतनी जिम्मेवारी, और बिजनेस में जितने जितने भी हर एक अनेक प्रकार के काम है सब में उतनी उतनी जिम्मेवारी। ये जिम्मेवारी का भूत उतना तगड़ा होता है, उतना तगड़ा होता है कि पूरा का पूरा उसमें डूब जाता है। खरेखर जीव को अपना आत्म कल्याण की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, तुम पहले आत्मा हो या तुम पहले मनुष्य हो, ये बताओ तुम पहले कौन हो। मनुष्य तो बाद में हुआ हो, पैदा हो तब से मनुष्य हो, इसके पहले तो तुम आत्मा है ही। तो आत्मा के आत्म कल्याण की जिम्मेवारी का क्या, ये हमारा प्रश्न है। आपका प्रश्न ये कि ये सब जिम्मेवारी का क्या, अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, अगर इसकी पढ़ाई का ध्यान नहीं रखते तो किसी तरह पढ़ते नहीं, वो लोग फेल हो जाते हैं। ध्यान देना कि नहीं देना, हम पेरेंट्स हैं, इसके गार्डियन हैं, माँ बाप हैं, हमारा फर्ज होता है कि नहीं होता है। देखो तो क्या वो बच्चा अपना प्रारब्ध लेकर के नहीं आया क्या। हमारे एक रिश्तेदार है, वो बच्चा पढ़ने में तो पहले से डल था, अच्छी तरह पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसका मौत शौक में अधिक प्रेम था, तो दोस्त लोग ज़्यादा होते हैं वैसे लड़कों को, फिर सिनेमा रेस्टोरेंट वो सब चलता है, स्कूल की पढ़ाई तो जैसे कैसे भी निपटाई, कभी कभी पैसा दे करके भी काम सलटाया जाता है। कॉलेज में आ गया तो कॉलेज में एक लड़की के साथ प्रेम हो गया, संबंध हो गया, फिर तो पढ़ने का एक तो डल था उसमें पूरा झुकाव उसका हो गया लड़के के प्रति, लड़की बड़ी सुंदर थी तो फेल होने लगा तो फिर बात तो आगे बढ़ चुकी थी, वो घूमते थे फिरते थे, क्या बात है कि भाई हमको तो हम लोग तो शादी करेंगे, जब आप शादी कराओगे तो नहीं कराओगे तो वैसे ही कर लेंगे, पढ़ाई का क्या, तो पढ़ाई में तो मन नहीं लगता है। सही बात तो है, पढ़ाई में मन आजकल नहीं लगता है, क्योंकि उसका मन तो एक जगह और जगह लगता था। चलो छोड़ो, मारो गोली पढ़ाई को, आ जाओ बिजनेस में। तो उनको शादी भी करा दिया, बिजनेस में ले लिया। अब क्या होता है, चिंता में तो क्या होता है, मिसकॉन्सेप्ट कहाँ है कि वो पढ़ा लिखा, अच्छी तरह पढ़ा लिखा नहीं है तो कमाएगा कैसे, जबकि पढ़ाई लिखाई साथ कमाई का कोई संबंध नहीं है। उसका तो उसके प्रारब्ध के साथ संबंध है। जो आवारा गिना जाता था, जो लड़का पढ़ता नहीं था, आवारा गिना जाता था, वो फिर बिजनेस में आया तो बिजनेस में बोला कि मैं तो मेरा बिजनेस स्वतंत्र करूंगा। वो स्वतंत्र बिजनेस करके लाखों कमाने लग गया। कितना? लाखों कमाने लग गया। उसको पिताजी बोले मेरे को कोई आपकी जरूरत नहीं है, आपके गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं सब अच्छी तरह मेरा बिजनेस संभालता हूँ, संभालूंगा, मैं अपने आप में होशियार हूँ। देखो, वो जुम्मेवारी लेकर के, जुम्मेवारी का टोपला लेकर के इनका बाप फिरता था, कर्म बांधे, क्या किया, अपनत्व करके कर्म बांधे, पाप कर्म बांधे, पुण्य भी नहीं बंधा, पर वो भोगेगा खुद। वो तो अपने प्रारब्ध के हिसाब से लाखों कमाने लगा और अपना ऐसा आराम करने लगा। मतलब क्या हुआ कि सब अपने अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। हम बेकार की चिंता करके हमारा अहित के सिवा कुछ नहीं करते, और वही हमारा अज्ञान है। करते हैं अपने आप को नुकसान और मानते हैं कि हम चतुर हैं। ज्ञानी कहते हैं कि चतुर तो जरूर हो, लेकिन संसार की चतुराई तुमको परिभ्रमण कराएगी। तो परिभ्रमण करने में तो चतुर हुआ तुम, दुखी होने में चतुर हुआ, ये चतुराई किस काम की है। दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में बहुत ठपकारा है जीव को, संसार चतुरी में चतुराई में चतुर, तुम सठ हो दीठ हो, ऐसा करके बहुत ठपकारा है। हैं? इतना इतना तुमको मार पड़ता है, इतना इतना दुखी होता है, तुम त्रियंज के शरीर में जेल खाने में जाते हो, तुमको लाज शर्म भी नहीं आती, ऐसा करके बहुत फटकारा है। हाँ, सनेपात को हो, मूर्खता को हो, बेवकूफी को हो, वो भी जितना भी कठोर शब्द है, वो भी जीव को समझाने के लिए, उसके हित के लिए कहा गया है। क्योंकि कहने वाले को कोई अपेक्षा नहीं, ज्ञानी से लेकर हमारे आचार्य निष्प्रभ होते हैं। ज्ञानी पर तो कोई आरोप कर सकते हैं गृहस्थ में है तब तक, लेकिन मुनिराज पर कोई आरोप भी नहीं कर सकते। इसका जो नग्न रूप है वही बताता है इसकी निष्प्रभता को, कि वस्त्र आदि तो है ही नहीं, जूते चप्पल वस्त्र तो कुछ है ही नहीं, न कोई तेल लगाने के लिए बाल भी रखते हैं, हैं? लेकिन जो पेट में खाना होता है वो भी उचित हमको नहीं चल सकता। हम आपकी व्यवस्था का स्वीकार नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसकी स्पृहा नहीं है। भगवान ऋषभदेव स्वामी को 6-6 महीना तक आहार का विकल्प नहीं आया, इतने निष्प्रह थे। विकल्प आया और नगर में पधारे तो योग नहीं था, क्योंकि दूसरे की व्यवस्था था, कोई स्वीकार नहीं करते, और उस जमाने में कोई जानते नहीं थे कि आहार दान कैसे दिया जाता है, युगलिया का समय पूरा हुआ था, कर्मभूमि चालू हुई थी, कोई मुनि हुए ही नहीं थे। सबसे पहले मुनि सुखदेव भगवान हुए, मुनि लोग थे ही नहीं कोई। फिर इनके आश्रय में दूसरे मुनि हुए, लेकिन सबसे पहले तो वो हो गए। कोई जानते नहीं थे और अविधि पूर्वक मुनि राजा हार लेते नहीं, वापस चले आए जंगल में, दुख नहीं हुआ। दुख तो नहीं हुआ और सुख बढ़ गया। भूखे पेट से सुख होता है क्या? लोग तो नहीं मानेंगे, दुनिया मानती नहीं है, लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये बात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। वो सुखी हुए इसका वो सबूत है कि 6 महीने तक फिर आहार का विकल्प नहीं हुआ उसको। इस बात का सबूत है कि वो दुखी नहीं हुए थे, सुखी हुए थे। 6 महीने के बाद विकल्प आया और उसके बीच में योग बैठ गया सब, जो श्रेयांश कुमार की कथा है, आहार दान का योग बैठ गया तो बैठ गया। लेकिन आहार लेने से कोई सुख हुआ था वो बात भी नहीं है। आहार के विकल्प में भी दुख है और आहार लेने के वक्त जो विकल्प चलता है कवल लेने का, उसमें भी दुख है, सुख नहीं है उसमें। विकल्प मात्र दुख रूप अनुभव में आता है। इसलिए वो विकल्प और विकल्प आश्रित शरीर दोनों को छोड़ करके सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं अशरीर अवस्था में, कि फिर कोई विकल्प का अवकाश ही नहीं है। कहते हैं कि जागृत है यानी कि चैतन्य स्वरूप है, जागृत है यानी कि बात क्या वहां लिखा ले गई जागृति में कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसी मेरी जागृति है। और वह जागृत है तो कहां जाए? फिर अपनी विद्यमानता, अपने चैतन्य परिणमन की सातत्यता को अनुभव करके शाश्वतपना, शाश्वत विद्यमानपना का वर्तमान विद्यमानता में भान हो जाता है। देखो ज्ञान की गति, जिसको स्वरूप अनुभव होता है वो तो विद्यमान चलते समय में होता है, और उसमें वर्तमान में मैं मौजूद हूँ, अपनी वर्तमान विद्यमानता का वो अनुभव करता है। सम्यक दर्शन का विषय निज सत्ता का ग्रहण होना उतना ही है। निज सत्ता सम्यक दर्शन का कार्य का निज सत्ता का ग्रहण करना, स्वरूप अस्तित्व ग्रहण होता है, उतना ही सम्यक दर्शन है। वर्तमान मौजूदगी को अनुभव में लेता है ज्ञान उस वक्त, लेकिन ज्ञान होता है त्रिकाल का, अनुभव होता है वर्तमान का, ज्ञान होता है त्रिकाल का। भूत भविष्य की विद्यमानता का अनुभव नहीं होता, लेकिन अनंत भूतकाल अनंत भविष्यकाल की विद्यमानता का ज्ञान उसी वक्त हो जाता है जिस वक्त वर्तमान विद्यमानता का अनुभव होता है। तो वो स्वानुभवी आत्मा त्रिकाल ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? कि हुआ, त्रिकाल का ज्ञान हो गया तो त्रिकाल ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? कि एक न्याय से वो त्रिकाल ज्ञानी हुआ। मैं शाश्वत हूँ, अनादि अनंत हूँ, मेरी विद्यमानता का कोई नाश नहीं होता, अभाव नहीं होता, त्रिकाल में ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने वर्तमान में अनुभव किया, वो त्रिकाल ज्ञानी हो गया। और अपनी शाश्वतता का अनुभव आधार बुद्धि के हिसाब से कितना बड़ा आधार वाली बात हो जाती है वो तो अनुभव करते हैं, वही जानते हैं, दृष्टांत से पता उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह से कि एक दरिद्री को, बिल्कुल दरिद्र है, उसको 10-20 लाख की संपत्ति भी मिल गई ने, तो उसको ये होता है कि अभी जीवन भर मेरे को किसी से दीनता नहीं करनी पड़ेगी, मांगना नहीं होगा, मेरे मांगने की परिस्थिति छूट गई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। क्या हो जाता है? अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरे पास मेरी संपत्ति है और उस संपत्ति के ब्याज में से भी मेरा गुजारा इतना चलेगा कि और बढ़ने वाली संपत्ति है, गुजारा चलेगा फिर भी। तो उसको जो आधार बुद्धि आ जाती है उसमें किसी की परवाह वो नहीं करता, जबकि वो संपत्ति 150 साल की बात की बात है। 150 साल के लिए भी जिसको आधार मिल जाता है उसको दुनिया की परवाह नहीं, तो जिसको अनंत काल की अनंत गुण संपत्ति का आधार मिले, ऐसे सम्यक दृष्टि को किसकी परवाह हो सकती है, कि उसको किसकी परवाह होती है। कितनी बड़ी हूफ आती है, हूफ को क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोग? हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, हिम्मत आ जाती है, जोड़, जोश आ जाता है, हूफ है, हूफ है। आधार लेकर के संतुष्टपना हो जाता है, आधार मिलकर, जिसका आधार मिलता है तो आधार मिलते ही निश्चिंत हो जाता है, उसको बोलते हैं हूफ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप जागृति हूँ, विभाव होने से उसका नाश नहीं होता, मेरे स्वरूप का विभाव से नाश नहीं होता, शरीर के नाश से नाश नहीं होता, राग के नाश से नाश नहीं होता, परिवार के नाश से नाश नहीं होता, दुनिया में वज्रपात होने से सबका नाश होवे तो मेरा नाश नहीं होता है। नाश तो क्या किसी का होता है, सब पर्यायांतर करते हैं, परमाणु भी पर्यायांतर करते हैं, जीव भी पर्यायांतर करते हैं। अनंत काल से शरीर के साथ एक क्षेत्र में रहा है फिर भी उसका नाश नहीं होता, अनंत काल से अनेक 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 शरीर के साथ एक क्षेत्र में रहा ना रहना हुआ है, शरीर का नाश हुआ है या शरीर में पर्याय अंतर हुआ है, संयोग छूट गया, मेरा स्वरूप से मेरा छूटना हुआ नहीं है, ये विद्यमानता का भान कराने का पारमार्थिक दृष्टिकोण इस वचनामृत में है। ये बातें खोली है, फिर वही बात को थोड़ी और खोलते हैं दूसरे पैराग्राफ में, यहाँ तक।